ये रेडियो नेपाल है। हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं मीनू प्रधान। आरंभ में आज के मुख्य समाचार शीर्षक। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने आर्थिक समृद्धि, विकास निर्माण एवं जनता की भावना अनुरूप काम करने का मंत्रियों एवं सचिवों को दिया निर्देश। भारत और चीन से संबंधित सीमा समस्या समाधान के लिए 3 महीनों के अंदर अलग अलग निरीक्षण समिति गठन करने का मंत्रिपरिषद का निर्णय। राजनीति एवं प्रशासन क्षेत्र की विसंगतियों को अंत कर तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल करने पर सरकार प्रतिबद्ध, गोकुल प्रसाद बासकुटा का कथन। और सीरिया के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हुए हवाई हमले में 22 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने नेपाल सरकार के मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और सचिवों को आर्थिक समृद्धि, विकास निर्माण और जनता की भावना और आवश्यकताओं को पूरा करने के काम में ईमानदारी से जुटने का निर्देश किया। नवगठित मंत्रिपरिषद की पहली बैठक के बाद प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय सिंह दरबार में मंत्रियों और सचिवों को निर्देश देते हुए प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि अगले 4 दिनों में आर्थिक वर्ष के दूसरे चतुर्मास में किए जाने वाले काम और अब तक की प्रगति की समीक्षा के विषय में विचार विमर्श होगा। सरकार ने भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद के समाधान के विषय में परामर्श देने के लिए अलग अलग निरीक्षण समिति गठन करने का निर्णय लिया है। कार्तिक 29 एवं मार्च 3 को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक के निर्णयों को सार्वजनिक करने के लिए आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार के प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री गोकुल प्रसाद बासकुटा ने बताया कि कार्य आरंभ करने के 3 महीनों के अंदर प्रतिवेदन पेश करने का निर्देश सीमा निरीक्षण समिति को दिया गया है। मंत्री बासकुटा ने बताया कि मंत्रिपरिषद की बैठक ने बलात्कार के मामले में 4 पीड़ितों को अभिभावकत्व राज्य की ग्रहण करेगी और उन्हें प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए क्षतिपूर्ति दी जाएगी। साथ ही गुलमी जिले के दुबी चौर की दुर्घटना में मरने वाले गुलमी के भोपाल बसनीत कृष्ण बहादुर थापा और मेघ बहादुर थापा के परिजनों को प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए क्षतिपूर्ति देने का निर्णय लिया है। इसी तरह जर्मनी के हैनोवर में 4 दिनों तक चलने वाली डोमोटेक्स मेले में सहभागी होने जा रहे नेपाल गलेचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता संघ को 40 लाख रुपए अनुदान देंगे। बूढ़ी गंडकी जल विद्युत आयोजना की वातावरण मुआवजा वितरण पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना इकाई की कार्यविधि 2076 को कार्तिक महीने से लागू करने और इसमें 1 साल की समयावधि बढ़ाने आदि निर्णयों की जानकारी उन्होंने दी है। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री गोकुल प्रसाद बासकुटा ने कहा कि देश की राजनीति और प्रशासन के क्षेत्र में काफी पहले से मौजूद विसंगतियों को हटाने की दिशा में सरकार पहलकदमी कर रही है। मंत्रिपरिषद के निर्णयों को साझा करने के लिए आज मंत्रालय में बुलाए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री बासकुटा ने ये बात कही। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस द्वारा बताई गई सरकार के 21 महीनों की 21 कमजोरियों के संदर्भ में पत्रकार के सवाल पर उन्होंने ये बात कही थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा शासन संचालन किए जाने के समय से ही नेपाल की राजनीति और प्रशासन में बढ़ती गई कमजोरियों को समाप्त करने की पहल सरकार कर रही है। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी समक्ष नवनियुक्त मंत्रियों ने आज अपने अपने मंत्रालयों में अपना अपना पद दायित्व ग्रहण किया। इस दौरान नवनियुक्त कृषि तथा पशु पक्षी विकास मंत्री घनश्याम भूषाल, भौतिक पुराधार तथा यातायात मंत्री बसंत कुमार नेमवांग, महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्री पार्वत गुरुंग, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री भानुभक्त ढकाल और उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री लेखराज भट्ट ने विभिन्न सुधार करने की बातें कही हैं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचंड ने कहा है कि द्वंद्व पीड़ितों की समस्याओं का जल्द ही समाधान होगा। आज काठमांडू में द्वंद्व पीड़ित साझा चौतारी द्वारा बुलाई गई अंतरक्रिया में अध्यक्ष प्रचंड ने कहा कि द्वंद्व पीड़ितों की समस्या को लेकर सभी को समान चिंता है और इसके समाधान के विषय में भी अंतर्हृदय से ही सही की सहमति है। मौके पर नेकपा के वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल ने कहा कि द्वंद्व पीड़ितों की समस्या का समाधान कर विश्व में उदाहरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अंतरक्रिया में नेपाली कांग्रेस के नेता कृष्ण प्रसाद सिटोला ने द्वंद्व पीड़ितों की समस्या को राष्ट्रीय समस्या बताते हुए कहा कि इसमें सहयोग के लिए कांग्रेस प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तथा विश्व स्तर के समसामयिक और साझा जिज्ञासाओं के संबंध में नेपाल में विश्व स्तर पर संवाद संचालन के उद्देश्य से सगरमाथा संवाद सचिवालय की स्थापना की गई है। नारायणहेटी दरबार के पश्चिम द्वार स्थित पासपोर्ट विभाग परिसर में स्थापित सचिवालय का आज परराष्ट्र मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावाली ने उद्घाटन किया। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। समय है व्यापारिक विश्राम का।
हजुर दर्शन,
भाग्यवानी बाबु, राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे। उ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजी।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ हजुर।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् भाउजू।
ओए वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
हा त पनि एनटिसीको सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटिसीको डे प्याक लिन *1415# डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। निर्वाचन आयोग ने आसन उपनिर्वाचन स्वच्छ, स्वतंत्र और कम खर्चीला होने को लेकर आश्वस्त रहने का अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आग्रह किया है। नेपाल में स्थित कूटनैतिक नियोग संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रतिनिधियों और विकास साझेदारों को आगामी उपनिर्वाचन के बारे में बताते हुए आयोग ने उन्हें उपनिर्वाचन अवलोकन के लिए आह्वान किया है। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा के अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड ने कहा कि द्वंद्व पीड़ितों की समस्याओं को जल्द ही समाधान किया जाएगा। द्वंद्व पीड़ित साझा चौधरी द्वारा आज काठमांडू में आयोजित अंतर्क्रिया में अध्यक्ष प्रचण्ड ने कहा कि द्वंद्व पीड़ितों की समस्याओं का जल्द ही समाधान होगा। उन्होंने कहा कि इस विषय का समाधान करने के लिए सत्य निरूपण तथा मेल मिलाप आयोग और लापता आयोग दोनों को प्रभावकारी बनाया जाएगा। राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तथा विश्व स्तर के समसामयिक और साझा विषयों को लेकर नेपाल में विश्व स्तर का संवाद संचालन करने के उद्देश्य से सगरमाथा संवाद सचिवालय की स्थापना की गई है। नारायणहिटी दरबार के पश्चिम द्वार स्थित राहदानी विभाग परिसर में स्थापना की गई सचिवालय का परराष्ट्र मंत्री प्रदीप कुमार ग्यवाली ने आज उद्घाटन किया। सचिवालय संचालन करने की जिम्मेदारी परराष्ट्र मंत्रालय की नीति योजना महाशाखा के प्रमुख कुमार राज खरेल द्वारा की गई। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस ने निर्वाचन आचार संहिता के खिलाफ जाकर चुनाव को प्रभावित करने का काम न करने का सभी से आग्रह करते हुए कहा कि आचार संहिता विपरीत होने वाले क्रियाकलापों को रोकने का निर्वाचन आयोग का ध्यानाकर्षण कराया है। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्री वर्षमान पुन ने बांग्लादेश से नेपाल के ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करने का आग्रह किया है। स्वतंत्र ऊर्जा उत्पादकों की संस्था नेपाल ईपान ने द्वारा आयोजित पावर समिट 2019 में शिरकत के लिए आए बांग्लादेश के ऊर्जा एवं खनिज राज्य मंत्री नसरुल हामिद से ऊर्जा मंत्री पुन ने ऐसा आग्रह किया। इस बात का जिक्र करते हुए बांग्लादेश में ऊर्जा की काफी ज्यादा मांग है, उन्होंने बांग्लादेश के राज्य मंत्री से खुले दिल से नेपाल के ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करने का आग्रह किया। नेपाल और बांग्लादेश के बीच साल 2075 के सावन में ऊर्जा क्षेत्र में सहकार्य संबंधी हस्ताक्षर हुए थे। सर्वोच्च अदालत ने निजी क्षेत्र के दूरसंचार प्रदाय कंपनी एनसेल प्राइवेट लिमिटेड के लाभकर संबंधी विवाद में अपना महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि एनसेल को 29,90,39,71,565 लाभकर चुकाना होगा। बहादुर नौगते के दिन तेज बहादुर केसी, पुरुषोत्तम भंडारी, डंबर बहादुर शाही, सुषमा लता माथेमा, मनोज कुमार शर्मा आदि न्यायाधीशों की वृहत इजलास ने यह निर्णय लिया था। इस निर्णय को आज सार्वजनिक किया गया। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। सीरिया के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हुए हवाई हमले में कम से कम 22 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में 10 बच्चे और 3 महिला शामिल हैं। इसी तरह कराची पुलिस ने मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट लंदन के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। इसने 96 लोगों की हत्या करने की बात स्वीकार की है। पाकिस्तान के कराची शहर में एंटी स्ट्रीट क्राइम और सोल्जर बाजार पुलिस ने बुधवार को यहां एक ऐसे ही आरोपी को गिरफ्तार किया। इस आरोपी ने 1995 में मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट लंदन की सदस्यता ली थी। उसी के बाद से वो हत्या करने लगा था। इसका नाम यूसुफ उर्फ ठेलेवाला बताया गया है। इसके पास से पुलिस ने एक टीटी पिस्तौल, ग्रेनेड और एक मोटरसाइकिल जब्त की है। पुलिस ने जब इससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने कई सारे राज बताए। यूसुफ उर्फ ठेलेवाला मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट का सदस्य है। यूसुफ ने अपने साथियों के साथ सीधे सीधे 30 लोगों की हत्या में शामिल रहने का स्वीकार किया। इसी के साथ उसने ये भी बताया कि उसने 66 शवों को भी ठिकाने लगाया है। बताया जा रहा है कि तब उसने मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट लंदन की सदस्यता ले ली थी। उसी के बाद से उसने हत्याएं करना शुरू कर दिया था। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 22.5 और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार शीर्षक एक बार फिर से। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आर्थिक समृद्धि, विकास निर्माण एवं जनता की भावना अनुरूप काम करने का मन्त्रियों एवं सचिवों को दिया निर्देश। भारत और चीन से सम्बन्धित सीमा समस्या समाधान के लिए 3 महीनों के अन्दर अलग अलग निरीक्षण समिति गठन करने का मन्त्रिपरिषद का निर्णय। राजनीति एवं प्रशासन क्षेत्र की विसंगतियों को अन्त कर तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल करने पर सरकार प्रतिबद्ध, गोकुल प्रसाद बांसकुटा का कथन। और सीरिया के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हुए हवाई हमले में 22 लोगों की मौत। इसी के साथ हिंदी समाचार बुलेटिन से कल तक के लिए आगे दीजिए, सुनते रहिए रेडियो नेपाल। शुभ रात्रि।